नमस्करोमि भूमित्रगणाः, आगच्छन्तु रेडियो मधुबनस्य श्रवणमञ्चे। अद्य वयं पुनरपि एकवारं पठामि संस्कृतम् इति कार्यक्रमे एकं नूतनं पाठं पठिष्यामः। अयि मित्रगणाः, अद्य अहम् एकाधिकद्विशतस्य पाठस्य आरम्भं करोमि। अत एव एकवारं सर्वेषाम् अभिवादनं कर्तुम् इच्छामि, अभिनन्दनम् अपि कर्तुम् इच्छामि। भो मित्रगणाः, अद्य अहम् एकस्य नूतनस्य पुस्तकस्य आरम्भं करोमि। पुस्तकमस्ति पातञ्जलयोगसूत्र। वयम् एतानि योगसूत्राणि पठिष्यामः। अर्थात् हे मित्रगण, नमस्कार है और रेडियो मधुबन के श्रवण मंच पर हमारा कार्यक्रम आरंभ करती हूँ, जिसका नाम है पठामि संस्कृतम। और आज का ये हमारा 201वां कार्यक्रम होगा, इसलिए आप सबों का अभिनंदन और अभिवादन भी करती हूँ। और आज हम एक नई पुस्तक का आरंभ करेंगे, जिसका नाम है पातंजल योग सूत्र। अर्थात हम कुछ योग सूत्रों की पढ़ाई आज से आरंभ करेंगे। प्रथमं सूत्रमस्ति अथ योगानुशासनम्। अर्थात महर्षि पतंजलि महोदयः योगस्य विवेचनं करोति। तो मित्रों, इस पातंजल योग सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम्। अर्थात अब योग का विवेचन किया जाता है, और यह विवेचन पतंजलि ऋषि ने किया है। और हाँ, यह बात मैं बताना भूल गई कि इस पुस्तक के चार अध्याय हैं, और पहले अध्याय का नाम है समाधिपाद। अर्थात समाधि की अवस्था के विषय में यहाँ सबसे पहले इस अध्याय में बताया गया है। अत्र द्वितीयम सूत्रम अस्ति योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। अर्थात चित्तवृत्तीनां निरोधः एव योगः। दूसरा सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो निरोध का अर्थ है उनको रोक कर रखना, उनको अपने सिर पे नहीं चढ़ाना, क्योंकि हमारा चित्त कई बार भटक जाता है। उसकी वृत्ति ही ऐसी होती है कि वह एक विषय से दूसरे विषय पर भटकता चलता है। तो चित्त वृत्ति की चंचलता को रोक करके फिर हम योग की ओर बढ़ सकते हैं। तृतीयम सूत्रम अस्ति तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम्। तो तीसरा सूत्र है तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम्, और इसका अर्थ हुआ कि तदा अर्थात जब हम चित्त वृत्ति का निरोध कर लेते हैं, तब दृष्टुः अर्थात देखने वाला, जो दृष्टा है, देखने वाला है, वह स्वरूपेवस्थानम्, वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो यहाँ केवल दृष्टुः और स्वरूपे और अवस्थानम्, इन तीनों शब्दों का शब्दार्थ समझने से काम नहीं चलेगा, वरन इसके पीछे जो चिंतन है, जो एक तत्व चिंतन है, उसे भी समझना पड़ेगा। तो हमारे भारतीय तत्व चिंतन में पहली मान्यता यही है कि मनुष्य के देह के अंदर आत्मा अवस्थित है, और वह जब चित्त में और देह में बिल्कुल व्यग्र और व्यस्त हो जाती है, तब वह अपने स्वरूप को भूल जाती है। लेकिन कभी कभी उसे अपना स्वरूप याद हो जाता है, और वह केवल एक दृष्टा के रूप में देह के और चित्त के व्यापार को देखती है। तो जब आत्मा इस प्रकार एक दृष्टा की भूमिका केवल निभाए, केवल एक दर्शक की भूमिका निभाए, तब हम कह सकते हैं कि योग की साधना संपन्न हुई। चतुर्थम सूत्रम अस्ति वृत्ति सारूप्यमितरत्र। अर्थात वृत्ति के समान, सारूप्य अर्थात उसी रूप को धरने वाला और इतरत्र अर्थात अन्य अवस्थाओं में। तो जब आत्मा दृष्टा की अवस्था में नहीं होती है तब वह आत्मा वृत्ति के सारूप्य अर्थात जैसी वृत्ति है उसी के अनुरूप हो जाती है। अर्थात जो भी चित्त की वृत्ति होगी, चित्त जिस दिशा में जाएगा आत्मा भी उसी दिशा में उसी के साथ जाएगी और उसी में रम जाएगी। लेकिन ऐसा होने से वह आत्मा अपना जो मूल स्वरूप है उसे विसर जाती है। अब अगला सूत्र कहते हैं, वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। क्लिष्ट अर्थात कष्ट देने वाली वृत्तियां पांच होती हैं और इनमें से कोई क्लिष्ट और कोई अक्लिष्ट। तो जो अक्लिष्ट होगी वह ज्ञान की वृद्धि करेगी, जो क्लिष्ट है वह संभ्रम की वृद्धि करेगी। क्लिष्ट अर्थात कष्ट देने वाली और अक्लिष्टाः अर्थात जो कष्ट नहीं देती है, क्लिष्ट नहीं होती है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, इन पांचों वृत्तियों के नाम बताए हैं, इस प्रकार उनका विभेद पतंजलि ऋषि ने किया है। और इनके नाम बताए हैं प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः अर्थात प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा तथा स्मृति, ये पांच वृत्तियां बताई हैं। अब इनमें से कौन क्लिष्ट होती हैं, कौन अक्लिष्ट होती हैं और क्यों क्लिष्ट या अक्लिष्ट होती हैं, क्यों ज्ञानवर्धक अथवा संभ्रम पैदा करने वाली होती हैं, इनके विषय में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक तुम लीना मेहंदले को अनुमति दो और पढ़ते रहो संस्कृत, सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।